कहने लगे, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इन्द बैतिकल मुहर्रम, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी औलाद की एक शाख को आबाद कर दिया है इस बेआबो गया वादी में तेरे मोहतरम घर के पास। कितना लंबा जुमला। यहाँ देखिए इब्राहिम क्या कह रहे हैं, अपनी नेकी का जिक्र कर रहे हैं। इन्नी अस्कन्तु, ऐ अल्लाह, मैंने अपनी औलाद, बुढ़ापे की औलाद मासूम इस्माइल और उसकी बेगुनाह माँ हाजरा को एक ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ झाड़ झंकार के सिवा कुछ भी नहीं होता। क्यों किया? तेरा हुक्म मान के। जब तूने कहा तो मैंने मान लिया। अल्लाह ताला, अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद है तो मेरी दुआएं कबूल कर ले। ये है वो वसीला जो पसंदीदा। यहाँ बाहर एक क्वेश्चन उभरता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी नेकी का एहसान जतला रहे हैं, तो इसका जवाब क्या है कि एहसान नहीं जता रहे बल्कि अपनी नेकी को अल्लाह के सामने एक हदीये और तोहफे के तौर पे पेश कर रहे हैं कि अल्लाह, मैंने ये किया, अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद है तो फिर तू मेरी इस दुआ को कबूल कर ले। पीछे आपको सूरत मायदा की आयत जो वसीले वाली थी उसमें सुना चुकी हूँ ये हदीस कि नेक आमाल का वसीला पसंदीदा। वो बुखारी की रिवायत भी याद कर लें जो तीन लोग किसी गार में फंस गए थे और एक एक करके उन्होंने अपनी नेकियों का इजहार किया और गार का पत्थर हटा और उनके बाहर आने का रास्ता बन गया, याद है ना। तो क्या पता चला? पहली बात है कि अपने किसी नेक काम का वसीला दिया जा सकता है। अब मसला क्या है, हम क्यों नहीं दे पाते? यहाँ आपको हज़रत इब्राहिम का कॉन्फिडेंस दिखेगा। जब नेकी पूरे शौक़, ज़ौक और कमी बेशी से बच के की होती है तो इंसान उसको पेश करता है। ये ऐसे ही जैसे देखिए कि आपका घर है, आपका डाइनिंग रूम बहुत साफ़ सुथरा है, हर चीज़ अपनी जगह पे, क्लीनिंग है, घर में खाना भी, तो आप खुशी खुशी वेलकम करेंगे मेहमान को। और अगर घर में ही कमी बेशी हो तो आप सोच में पड़ जाएंगे, बुलाऊं के ना बुलाऊं, आ तो जाएं लेकिन घर की हालत को अच्छी नहीं है, है ना। इसी तरह जब नेकियां आला दर्जे पे की होती है ना, किसी भी चारों एंगल से देख लो, अंदर से भी साफ़ है, बाहर से भी साफ़ है, धूल नहीं, मट्टी नहीं, तो बंदा कहता है अल्लाह इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती। और जब नेकी में भी कमियाँ हों, मिसाल लें, चलिए लिखिए ज़रा, आप सबको भी जगाऊँ, खुद भी जागो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी यह नेकी की बात की ना कि मैंने बुढ़ापे में औलाद को और बीवी को छोड़ दिया, क्या हम अपने इस कोर्स को अल्लाह के सामने पेश कर सकते हैं किसी मौके पे कि अल्लाह मैंने तेरी रजा के लिए ये कोर्स किया, अल्लाह ये तेरी ने, और देख अल्लाह मैंने कितनी एक्सीलेंसी के दर्जे पे किया। मेरा अल्लाह, हमें तो पहले एकदम वो गिरेबान में झांकना पड़ेगा, कितनी छुट्टियाँ, कितने लेट, कितनी असाइनमेंट्स नहीं, कितने टेस्ट नहीं, कितने नहीं, कितने नहीं, क्या हम अपने ये दीन के काम अल्लाह को पेश कर सकते हैं हुज्जत के लिए? देखिए अल्लाह पे एहसान कोई नहीं जतलाता, लेकिन क्वालिटी है ना, किसी को अपने कुछ देना होता है ना तो पहले आप सोच में पड़ते हैं, क्या ये इसके काबिल है? ऐसा कपड़ा वो पहनते हैं, ये उनके स्टैंडर्ड पे उतरता है? ये नहीं कि वो चीज़ बुरी होती है, लेकिन जिसको हम देते हैं उसकी हमारे दिल में इज्जत बहुत होती है या अकेले की चॉइस बहुत अच्छी होती है। तो याद रखिए, कुछ नेकियां ऐसी करके रखें जो मुश्किलात में अल्लाह को पेश कर सकें। हम कितना को आपको मजबूर कर सकते हैं, कोई आप में से बता सकता है? एक एक रूल बना हुआ है, लिखा हुआ डे वन से बना हुआ है ना, सर चीज़ें लिखी हुई हैं। जो लोग बीच में आए हैं उनको भी इन बातों की खबर है, लेकिन अब आप वो काम करते हैं कि नहीं करते? एक डेडलाइन हर चीज़ की है, जब कोई नहीं मानता तो क्या किया जाए? फिर उसका एंड पे इंजाम देख लेगा वो खुद ही, लेकिन क्या आप और मैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों में खो के रह जाए? पहले रोज़ आके मैं, और मेरा तो ये काम भी नहीं है, क्या रोज़ आके पहले मैं आपकी अटेंडेंस शीट जहाँ आके डिस्कस करूँ, ये लेट क्यों आए, ये साइन इन साइन, सब कुछ इधर उधर बिखरा होता है, लेकिन क्या हमारा यहाँ आने का मकसद ये है? ये मकसद नहीं है, ये सिस्टम है। हम क्या लेने आते हैं इधर जी? आप बताएं आंटी जी, आज क्या लेने आए आप? ये कह रहे हैं कि कल मैं नहीं आई कि मेरा इनका ख्याल था कि ये बीमार है, तो इनको बाद में गिल्ट रहा, और आज अब अफसोस हो रहा है कि कल क्यों नहीं आई, आज आ गई ना, बैठे हुए ना सुकून से, घर में हो सकता है कराह रहे होते, दर्द हो रही होती, ठीक है ना जी। आप याद रखिए हम सब यहाँ हिदायत लेने आते हैं, ये हमारी दुआ कबूल हुई है पिछले रमजान की, हदीना सिरातल मुस्तकीम। ये सब साथियों को मैं कहूँगी, अब मैं आप में से इस वक्त किसी को, सच्ची बात है मेरे पास तो सारे रिकॉर्ड हर वक्त नहीं आते, हम मदद करते हैं एक दूसरे की, लेकिन मेरा ताल्लुक आपको पढ़ाने से है। लेकिन याद रखिए अगर आपको यहाँ आकर हिदायत मिली है ना, और मिल रही है, नुकसान का सौदा नहीं। लेकिन अगर आप हर रूल को मान रहे हैं, टाइम टेबल को फॉलो करके आप उसकी एक एक टाइमलाइन को ले रहे हैं, तो कल इंशाल्लाह आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। लेकिन आप में से कोई अगर आज तक एक टेस्ट भी नहीं दे चुका, हमारा कुछ नहीं उससे बिगड़ा, ना हमारा ये खाक है कि हम रोज़ आपसे पूछें, असबाब पैदा करते हैं, कोशिश करते हैं। अब आप लोगों से भी मीटिंग्स होने वाली हैं, हर एक क्लासेस में हम कुछ अरसे के बाद वन ऑन वन बेस पे कोशिश करते हैं, जितने लेवल पे ले सकें, कोशिशें हैं ना, लेकिन मकसद तो ये नहीं है, ना डिप्लोमा मकसद है, ना टेंडर शीट मकसद है, लेकिन हम आपसे तवक्को क्या करते हैं, क्या आप अपना काम वक्त पे करें। तकवा क्या होता है? चौकीदार, कोई आपके सर पे खड़ा है कि नहीं खड़ा, और अगर कोई खड़ा भी हो जाए तो जिसने नहीं मानना उसने फिर भी नहीं मानना, राइट। तो नेकी इस लेवल पे करें। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जैसे हर एक दिन, मेरा ख्याल है कि कोई भी इससे मुबर्रा नहीं, कुछ ना कुछ सोच के रखा होता है कि कोई मुश्किल पड़ गई तो ये काम पेश कर देंगे, है ना, हर एक के पास होता है ना। बच्चों के लिए आपने कई चीज़ें सोची होती हैं, सफ़र में जाते हैं कहीं पैसे थोड़े से पर्स में छुपा देते हैं कि कोई मजबूरी पड़ गई, मुश्किल पड़ गई, रखा होता है ना। बस यहाँ ये कहने लगी हूँ, कुछ ना कुछ नेकियाँ ऐसे दर्जे पे कर लें कि इब्राहिम की तरह अल्लाह को पेश करें कि इन्नी अस्कन तुम्हें ज़ुर्रियती बिवादिन गैरी ज़ी ज़रअ। और आप देखिए कितना लंबा जुमला, इब्राहिम के जुमले बड़े छोटे होते हैं, लेकिन कहते हैं अल्लाह आप जरा इस जुमले के दर्द को महसूस करें। और 90 साल की उम्र है तकरीबन, और 70-80 साल की उम्र की बीवी और मासूम बच्चा जो इतनी दुआओं के बाद हुआ, रब्बी हबली मिन सालिहीन, उसको अल्लाह के हुक्म पे छोड़ा है, मैंने अपनी औलाद को छोड़ा बी वादिन वादी में, गैरा नहीं है जी जारेन कोई खेती, वहाँ कुछ भी नहीं था, इन द बेटी कल मुहर्रम, हाँ तेरा घर वहाँ हुरमत आला। आप कहते कि खाना कबा शुरू से था, लेकिन तूफान नूह में इसकी ऊपर की बिल्डिंग सब ख़त्म हो गई थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे और इनको छोड़ा, उस वक़्त इस तरह की फॉर्म का शक्ल का घर नहीं था। ये हिस्ट्री पढ़े आप, हिस्ट्री ऑफ मक्का, खाना काबा की हिस्ट्री, आपको उसमें ये सारे फेजेस मिलेंगे। जब थोड़े से इस्माइल बड़े हुए तो घर की बुनियादें उठाई थी, तो जब बीबी हाजरा को छोड़ा वहाँ ये काला कमरा भी नहीं था कि उसमें छुप के सो जाए। गैर अजीज अरे कोई खेती नहीं थी। हम आज करते हैं अल्लाह के हुक्म पे, हम तो अपने बच्चों का स्टैंडर्ड लो होता देखें, अगर उनको दीन की तालीम ज़रा ज़्यादा देने लग जाए और दुनियावी तालीम पीछे हो। यहाँ देखिए एक बहुत गहरा नुक्ता है, क्या इब्राहिम ने अपने बच्चे को जब इधर छोड़ा तो बच्चा कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? हम कहते हैं बच्चे अगर दीन सीखने लग जाएंगे तो इनकी उधर तवज्जो चली जाएगी, फिर उधर वक्त नहीं मिलेगा, फिर उधर के असाइनमेंट्स नहीं करेंगे। हालांकि आप देखेंगे कि अल्लाह ने इस बच्चे से वो काम ले लिया, जब हम सबके बच्चों को अल्लाह जमा कर ले तो उनकी कामयाबी वहाँ नहीं बनती, तो हम अपने जहन से नहीं सोच सकते। फिर आप देखिए कि यहाँ एक छोटा सा जुमला अगर आपने नोट किया कि यहाँ तक जो भी बात है रब, अगर आपने पहली बात देखे कि रब्बी थी शुरू में, दो आयतें रब्बी से शुरू हुई, 35 में रब्बी, 36 में रब्बी, और यहाँ क्या लफ्ज़ आ गया, रब्बाना। बड़ा खूबसूरत नुक्ता मुफस्सरीन ने उठाया कि देखें पहले तो इब्राहिम लफ्ज़ रब्बी रब्बी कह रहे थे, लेकिन जो ही औलाद का जिक्र आया तो रब्बना, अल्लाह हमारा, अब बच्चों को शामिल कर लिया। ये है असल में गहरा नुक्ता कि यहाँ रब्बना से मुराद इब्राहिम के साथ अब इस्माइल का रब है। और इन द बैती कल मुहर्रम, तेरे हुरमत वाले घर, इससे पता चलता है कि हज़रत इब्राहिम को ये पता था कि घर इसी के कहीं करीब है, लेकिन उसकी बिल्डिंग नहीं दिख रही। सूरह बकरा आयत 127 में हम पढ़ चुके, वयर्फ व इब्राहिम अल-क़वाइद मिन अल-बैति व इस्माइल, के इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर अल्लाह के घर की बुनियादें उठाई थी। चलिए ये तो कर दिया, ये किया क्यों, मकसद क्या है इस काम का, अगले से भी चलिए, रब्बना लियकीमुस्सलाह। ये मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी इसलिए दी है कि मेरे रब है हमारे रब, ताकि ये नमाज पढ़े। यानी ये कुर्बानियाँ कि औलाद को एक पौश इलाके से निकाल कर, लेकिन चूंकि वहाँ मस्जिद नहीं, वहाँ दीन का काम नहीं, वहाँ फितने बहुत हैं, तो मैं अपने बच्चों को किसी दीन की जगह के करीब ले आया, चाहे मुल्क के अंदर, चाहे शहर के अंदर, चाहे दूसरे मुल्क, चाहे कहीं। यानी औलाद को अल्लाह की इबादत गाहों के करीब आबाद करना चाहिए, यहाँ से ये पता चलता है, ताकि सुस्ती ना आए नमाज के वक्त पे। देखिए कितनी रीजंस होती है ना किसी के भी कहीं जाने की, कभी शादी हो जाती है, कभी जॉब मिल जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है मर्दों की। हम मुसलमानों की डिक्शनरी में द टॉप मोस्ट रीज़न ऑफ माइग्रेशन शुड बी ली यकीमुस्सलाह। अब यहाँ अगर लिटरल देखें तो मस्जिद है, आप कहते हैं अच्छा मस्जिद के करीब कर दें तो नमाज़ पढ़ेंगे, तो दिल में नमाज की बड़ाई नहीं, अल्लाह की बड़ाई नहीं, तो मस्जिद के करीब जाके भी नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद के नेबर में नहीं जाके पढ़ेंगे, आप दूर की बात क्या करते हैं। तो ली यकीमुस्सलाह से फिर मुराद है कि इनका दिल वही, पिछले सबक को याद कर लें कि अल्लाह की मोहब्बत का बीज कहीं जाके इनके दिल में डले, फिर वहाँ से इबादत का तना निकले, ताकि ये नमाजी बने। तो गोया के औलाद की इबादत की फिक्र की, अल्लाह तू क्या कर, फज अल अफ इदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम। ए हमारे परवरदिगार, यानी पीछे से बात चल रही है, ताकि ये नमाज कायम करें, तो तू लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे। ये अगली चीज़ है जो औलाद के लिए मांगी है, इसको आप भी नोट कर लें कि अल्लाह मेरे बच्चे ऐसे हों कि लोग भी इनसे प्यार करें। और किन से लोग मोहब्बत करते हैं? रविश लोगों से, बुरे अखलाक वाले बच्चों से, रौनत वाले बच्चों से। कौन से बच्चे दुआएं देते हैं? कैन यू बिलीव, जो मोहब्बत प्यार और आजी वाले होते हैं। कि अल्लाह मेरे इन बच्चों से ऐसे काम ले कि लोग इनसे, इन नेकियों की वजह से मोहब्बत करें। इसकी गवाही आप सब दे सकते हैं, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, बहुत सारों के बच्चे। आपको किसके बच्चे अच्छे लगते हैं जो बहुत खूबसूरत हो? बच्चे से मैं बेबीज नहीं कह रही, यानी ग्रोइंग एज 8, 10, 12 के बाद टीनेजर और जो भी बड़े हैं, इवन बड़े बच्चे, किस, कौन से बच्चे आपको लोगों के अच्छे लगते हैं? कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देना चाहे तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। जो ताबेदार हो, जो बच्चे ताबेदार हैं। और आप देखिए जो माँ बाप के ताबेदार होते हैं वो अमूमन माओ की दोस्तों के भी ताबेदार होते हैं। अगर वो माँ को अम्मी की बजाय अम्मी जी कहते हैं तो वो माँ की दोस्त को आंटी की बजाय आंटी जी कहते हैं, फर्क पड़ता है ना। तो और क्या अच्छा लगता है किसी के बच्चों में आपको? कोई और भी बताए अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि आजकल जो सबक है ना ये सिर्फ बोलने वाला नहीं है, ये डायलॉग स्टाइल है। यदि अच्छा अखलाक हो, स्माइली हो, और जी आप बताइए। यानी कि बच्चे सलाम करने में पहल करें, ठीक है। जो बच्चे खुद नेक हों, दीनी रुझान हो, उनका नमाजों से दिल लगे, उनका हाल उलिया चो। जी नसरीन जी, आप वो पहचान, उनको पता है ना आंटी मैं बड़ा हो गया हूँ तो आंटी से ज्यादा बात नहीं करते। जी ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि जिन बच्चों को हमने बचपन से देखा होता है, तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो बच्चे जो उस बचपन के ताल्लुक की बुनियाद पे भी आपसे मिलते रहे तो आपको अच्छे लगते हैं ना। अब आप देखिए कि ये सब काम जो भी करता है, करता तो अपने लिए ना, लेकिन होता क्या उसका फ़ायदा कि अफिदतम मिनन्नास तहवील है। मुझे अपने वालिद की एक बात याद आ गई, वो कहा करते थे कि काम अच्छा करना अपने लिए और सोहबा जग की। बंदा करता अपने लिए अच्छा काम है, लेकिन लोगों में खामखा मशहूर हो जाता है कि फलां के बच्चे बड़े अच्छे हैं, राइट। तो कहते हैं कि अल्लाह मेरे बच्चे ऐसे हों कि लोग भी उनसे प्यार करें। आप अपने बच्चों के लिए ये दुआ मांगा करें कि अल्लाह मेरे बच्चों से दूसरे प्यार करें। देखिए प्यार का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? छोटा बच्चा ना, आपको उस पर प्यार आएगा ना तो फौरन कैंडी दे देंगे खोल के, अगर आपके पास है। छोटा बच्चा आपको उस पर प्यार आएगा, आप जाके उसको भी हक दे देंगे, किस कर लेंगे, थोड़ी सी उसकी बेचारे की गाल मरोड़ देंगे, हैं। बस बच्चे इससे भी बहुत चिढ़ते हैं। लेकिन अब किसी का बड़ा बच्चा है, जिस बच्चों को हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं इस वक्त, उन पे प्यार आपको आएगा तो आप क्या देंगे? दुआ, दुआएं मिलती हैं ऐसे औलादों को। तो कहते हैं कि अल्लाह मेरे बच्चों के दिलों में लोगों की नफरत ना हो। और तीसरी दुआ आप देखिएगा, वरज़ुकहुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून, और इनको रिज़्क अता कर फलों से ताकि वो शुक्र अदा करें। ये क्या मांग लिया औलाद के लिए? कैसी बात है, देखो दुनिया मांग ली, रिस्क मांग लिया, फल मांग लिए, नहीं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। आप देखिए कि इब्राहिम की दुआएं कितनी खूबसूरत हैं। क्या कुछ मांग रहे हैं अपनी औलाद से, उनका दीन भी मांग रहे हैं, उनका अखलाक भी मांग रहे हैं, और उनके लिए दीन और दुनिया की हर चीज़ मांग रहे हैं कि अल्लाह मेरे बच्चों को तू बेहतरीन चीज़ें दे दे, जो कुछ हो, अपने लिए भी मांगा, दूसरों के लिए भी मांगा। और सब चीज़ों को मांगने के साथ साथ आप देखिए कि अपनी औलाद की जो सबसे बड़ी हज़रत इब्राहिम बल्कि दूसरे अंबिया कराम को भी फ़िक्र लगी होती है ना, वो अपनी औलाद का तकवा है। इसका इशारा आपको आयत 38 में मिल रहा है, रब्बना इन्नक तअलमु मा नुख्फी व मा नुलिन, ए हमारे परवरदिगार तो खूब जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ हम जाहिर करते हैं। क्या पता चल रहा है, मुझे हज़रत लुकमान की वसीयत याद आ गई जो हम इंशाल्लाह सूरह लुकमान में पढ़ेंगे, कि दर पर्दा इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलादों को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारे ज़ाहिर को भी जानता है, तुम्हारे बातिन को भी जानता है। तुम जो मेरे सामने करते देखते बोलते हो, जो मेरे बग़ैर बोलते देखते हो, अल्लाह को सब पता है, क्योंकि वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्द, क्योंकि अल्लाह पे कुछ नहीं छुपा हुआ ज़मीनों में वला फिस्समाई और ना आसमान में। ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ अल्लाह से नहीं छुपी। तो इससे हम सबको एक इशारा मिलता है कि हमें अपने बच्चों को ये सोच देनी है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, और ये एहसास बंदे को कितना खूबसूरत कर देता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। किसी की भी नज़रें जब आपके ऊपर होती हैं ना, तो आप उसकी नज़रों को महसूस करते हैं। बात तो इरीटेशन होने लग जाती है जब कोई आपके ऊपर नज़रें गाड़ लेता है, आप सोचते हैं पता नहीं क्या वजह, क्यों मेरे पे नज़रें लगाई हुई हैं, टिक टिक देख रहा है। लेकिन अल्लाह की नज़रों को जब बंदा महसूस करता है तो क्या फिर वो कॉन्शियस नहीं होगा? और आपने ज़रा इससे पिछली आयत के आखिरी हिस्से को देखे, औलाद के लिए रिस्क मांगा फलों में से, क्यों मांगा? ताकि खा पी के मोटे ताज़े हो जाएं, ताकि इनके सारे वाइटामिन पूरे हो जाएं, ताकि ये हेल्दी हो, नहीं, लअल्लहुम यशकुरून। जो सबक के शुरू में आपको हदीसें बताई हैं वो सारी इधर लिख लें, ताकि ये खा पी के तेरा शुक्र करें, इनके दिल तेरे शुक्र के जज्बों से भरे, इनको एहसास हो कि हमारा रब हमें कितना देता है। सच बताएं, हम जितने भी औलाद के लिए खाने पीने के इख्तमाम करते हैं, क्या उसके नतीजे में उतना शुक्र उनसे अदा करवाते? और समर जो होता है ना, ये मेहनत के फल को कहते हैं, कोई भी समर। एक लफ्ज़ होता है फवाकेहा या फाकेहा, वो फ्रूट होता है, रियली फ्रूट, जिसका फ्रूट्स कहेंगे। लेकिन समर जो है ना, ये सिर्फ फ्रूट्स नहीं होता, नतीजा, रिजल्ट। बस आप देखिए कि दरख्त पे जब बीज डलता है, सब कुछ होता है, तो उसके नतीजे में फल आ जाता है ना। इसी तरह आप देखिए कि बाज़ दफ़ा मेहनत का नतीजा होता है, सारे दिन काम करके तनख्वाह जो मिलती है वो उस वक्त का नतीजा है, प्रोडक्ट होता है ना। समरा कहते हैं किसी भी चीज़ की फ़ायदेमंद चीज़, यानी दरख्त का फ़ायदेमंद हिस्सा जो होगा ना, उसको हम समर कहेंगे। तो गोया कि अपनी औलाद के लिए दीन और दुनिया दोनों मांग रहे हैं। यहाँ से एक और बात पता चलती है कि फल मांगे, बड़ा खूबसूरत नुक्ता है, खड़े कहाँ हैं? गैर अज़ीज़ अरिन, कोई असबाब हैं, कोई मीन्स हैं, नहीं है ना, तो मांग क्या रहे फल? ज़मीन बंजर है, नहीं, वही बात कि मेरा रब कर सकता है, ये है तवक्कुल। मेरा रब सहराओं में भी फूल पैदा कर सकता है, अपने रब से मांगा। और दूसरी बात देखिए, ये नहीं कहा कि अच्छा मेरे बच्चे इधर आए हैं, अल्लाह इनको दाल रोटी दे दे, बस ऐसे ही गुजर बसर कर ले, रुकी सुखी दे दे, बेयर मिनिमम पे नहीं रहे, बल्कि बेस्ट थिंग मांगी। तो इससे क्या पता चलता है कि अपनी औलाद की दुनिया मांगे, मत कहा करें कि अल्लाह ये एड़ियाँ रगड़ते हुए मरें, ये सिसक के मरें, इनको थोड़ा ही रिस्क देना, अल्लाह खुला दे, कौन सा ला अल्लाहुम यशकुरून, वो सारे शुक्र के जज्बे दिल, ज़ुबान और अमल से। इस रिस्क को तेरे ही रास्ते में लगा दें, फिर पता चलेगा, फिर फायदा होगा। और नेमत का शुक्र क्या होता है? नेमत देने वाले के सामने आजिज होना। आप देखिए कि आपको नबियों के इस कलाम में एक ठंडक और एक मिठास मिल रही है। हमें भी अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम शुक्रगुजार हैं? किसके? सबसे पहले अल्लाह के। कैसे पता चलेगा? अल्लाह से बात करने में। इब्राहिम की दुआएं इतनी मीठी, हम तो बाज़ दफ़ा सच्ची बात ऐसे दुआ दे करते हैं जैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं होटल में जाके, गिव दिस गिव दिस गिव दिस और साथ अचार चटनी भी ले आना, और कभी कभी हुक्म, यस इट शुड बी। नहीं, आज नहीं, आजकल वहाँ हम सैटरडे क्लास में मैनर्स में अदब का मौजू पढ़ रहे हैं, पिछले वीक पढ़ा, सब साथियों ने कमेंट यही दिए कि बाकी हमने तो कभी सोचा नहीं, और सिर्फ एक मौजू पे मैंने ऑलमोस्ट 50 मिनट या 1 घंटा बात की थी, मैनर्स विद अल्लाह सुब्हान तआला। अगर आप में से कोई था तो बता सकता है कि शायद 15 से 20 मैनर्स लिखाए थे कि अल्लाह से अदब के क्या हक हैं, और वो एक बिल्कुल एक यूनिक टॉपिक है ना, क्योंकि हमें अपनी ज़ुबान के लफ्ज़ों का भी नहीं पता होता। तो याद रखिए, किसी से भी अगर आपको कोई नेमत मिली है ना, तो उसके शुक्रगुजार बने, और उस शुक्रगुजार का इजहार उसके साथ आपकी सोच से शुरू होता है। ज़ुबान पे बदतमीजी कब आती है? जब सोच आवारा होती है। आपके माँ बाप ने आपको आज तक क्या दिया, इसको देखें, ये ना सोचें क्या नहीं दिया। बस बच्चे अपने माँ बाप के ना शुक्रिया हो जाते हैं, क्या किया हमारे लिए इन्होंने, भाई आपको दुनिया में लाने का ज़रिया बने हैं, तो क्या करते ना करते। कभी आप वाकई अपने माँ बाप की नेमतें जो उन्होंने आपके ऊपर निछावर की उनको रखें, तो हमारी आवाज़ें कभी उनके बारे में ऊँची ना, आवाज़ उठना तो बड़ी दूर की बात है, दिल की गहराई में कभी ख्याल भी ना आए। इसी तरह आप देखिए कि ज़िंदगी में किसी इंसान से अगर आपको इतना सा भी फैज़ मिल जाए, तो बस आप उसके बारे में अपनी सोच सीधी करें, क्योंकि सोच का बिगड़ना डाइवर्शन की अलामत है। जिन उस्तादों ने हमें उर्दू लिखनी सिखाई, आज हम कुरान पढ़ रहे हैं ना, तो आपका क्या ख्याल है उन उस्तादों को हमारी उस उर्दू पढ़ाने का कोई अजर नहीं मिलेगा? कितनी दफ़ा इन 13 पारों में आपको अपनी उर्दू की टीचर याद आई बचपन से आज तक, जिन्होंने आपको उर्दू लिखनी पढ़नी बोलनी सिखाई, ताकि आज आप कुरान का उर्दू में तर्जमा पढ़ें। हम कितनी जल्दी अपने मौसनों को ज़ाया कर देते हैं, ये इंसानों की ना शुक्री होती है। हम सोचते भी नहीं, एक बात बड़ों से सुनी भी, कहते थे कि अगर कभी चलते चलते थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के नीचे बैठ जाओ ना, धूप थी गर्मी थी, तो किसी दरख्त के नीचे भी बैठ गए, तो ज़िंदगी भर उस दरख्त का ये एहसान ना भूलना कि एक दफ़ा गर्मी की दोपहर में इस दरख्त के साए में मैं बैठा था। कहाँ इंसान को खैर मिल जाए, कहाँ उसको चलना आ जाए, बोलना आ जाए, बातें करना आ जाए, पटर पटर आज हम बोलते हैं, किसका पीछे हाथ है? और आप देखिए कि जो माशाल्लाह अभी लिखने की हमारी स्पीड बनती जा रही है, ये पहले नहीं थी ना, तो इस कोर्स में एक ये शुक्रगुजारी अल्लाह की हमारे ऊपर नहीं है कि उसने हमारी लिखने की स्पीड तेज़ कर दी। इतनी देर कभी बैठे नहीं थे, फिल्में जब से छोड़ी तब से कौन 3 घंटे बैठता था, बैठना आ गया, याद करना आ गया। आप तर्जमा जब याद करते हैं तो आपको पता है कि आपकी मेमोरी जो है वो तेज़ हो रही है, जैसे ही जैसे जिस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करें वो ज़्यादा होती है। तो बस अब आप देखिए कि बच्चों का टैलेंट झलकता है, कई छोटे छोटे बच्चे इतना प्यारा कुरान पढ़ते हैं, तो इब्राहिम की दुआएँ सुनते पढ़ते हुए वाकई दिल जो है ना वो बड़ा इमोशनल हो जाता है कि कितने अक्लमंद थे कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए इतनी दूरस दुआएँ की। और साथ ही आप देखिए फिर शुक्रगुजारी के जज्बे आए, 39 अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सारी तारीफ़ें उसात के लिए हैं जिसने, वह वली अलल किबर इस्माईल व इसहाक, जिसने मुझे बुढ़ापे के बावजूद इस्माईल और इसहाक जैसे बेटे अता किए। कितना बुढ़ापा था आपको पता? जब इस्माईल की पैदाइश हुई थी ना, तो हज़रत इब्राहिम 81 ईयर्स के थे, 81, और इसके कई साल बाद हज़रत इसहाक पैदा हुए थे। और आपको ये भी पता है कि नहीं, अब जैसे नबियों की हिस्ट्री हमें समझ आती जा रही है, तो इब्राहिम की ज़िंदगी भी समझ लें कि हिजरतों में ही गुजरी, इधर से उधर उधर से इधर, और 81 ईयर्स के होने तक इनके बच्चे नहीं थे। डॉक्टर तो मायूस कर दे, सर अगर वो 81 थे तो बीवी भी कुछ 15-16 की तो नहीं थी ना, वो भी बड़ी थी, अल्लाह ने दे दिया ना बच्चा। یہاں سے مفسرین کہتے ہیں کہ جو دین کا کام کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان یوزل حالات کر دیتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی, اور آپ دیکھیے پہلے اسماعیل ہوئے تھے, اکیلے تھے, اونلی چائلڈ تھے, جب اللہ کے حکم پہ ان کو ادھر چھوڑا, اس کے تحفے میں اللہ نے اگلا بیٹا اسحاق دے دیا. ہم رو رہے ہوتے اللہ اتنی دیر سے دیا پھر لے رہے, اللہ اتنی بڑھاپے میں دیا پھر یہ بچہ چھوڑ دوں. ہم عقل کتنی استعمال کرتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ نبی زیادہ عقل مند نہیں تھے, عقل نہیں استعمال کرتے تھے. یہ میں نے جو عقل مند کہا یہ بڑے اچھے لفظوں میں استعمال کیا, کیونکہ عقل عیار ہوتی ہے, ہوشیار ہوتی ہے. بہت پولیٹیکل پارٹی ہے عقل, آپ اگر سننا چاہیں وہ اب تو دل کو بدلنا سیریز, اس میں جسم کے ایک ایک اس پہ ہم نے بات کی ہوئی ہے, دل جسم میں کیا اور عقل کیا اور آنکھیں کیا اور ہاتھ کیا. تو عقل بالکل جیسے آپ کہیں کہ وکالت نہیں کرتا کوئی, وکیل ہے, ہر گناہ کی وکالت عقل کرتی ہے, کوئی بات نہیں, مجبوری ہے, کرنا پڑے گا, لیکن دل بادشاہ. تو لہٰذا ادھر ادھر میں نہیں پڑے, بلکہ کہا اللہ لے لے, تو اللہ نے اسحاق دے دیا. ان ربی لسمیع الدعا, اور بے شک میرا رب سننے والا دعاؤں کا. پیچھے دیکھیے اسماعیل کی بات آئی تھی تو ربنا ربنا, اب اس آیت میں پھر دیکھیے لی میرے لیے اور ربی, پھر واحد متکلم پہ آ گئے ہیں. یہ بندے کا اپنا تعلق ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں کسی کو نہیں آنے دینا. اللہ یہ میرا تعلق ہے تجھ سے کہ تو میری دعاؤں کو ضرور سنتا ہے, اب کر کیا, بیٹے تو تُنہیں دے دیے. اور آپ دیکھیں کہ اسماعیل کو ابراہیم نے چھوڑ دیا, تو کیا پھر اسماعیل ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے؟ نہیں, چار دفعہ آتے روایات میں کہ حضرت اسماعیل کی ملاقات ابراہیم سے ہوئی بعد میں بھی, اور اس کے بعد پھر بڑھاپے میں ساتھ رہنے لگ گئے ہوں گے. تو یہ وقتی قربانیاں ہوتی ہیں جو اللہ کے دین کے لیے بندہ کرتا ہے, بعد میں پھر اس کی ٹھنڈک ساری عمر اس کو محسوس ہوتی ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے میرے پروردگار مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد میں سے بھی. کس بات کی فکر لگی ہوئی ابراہیم کو, اولاد کی نماز نماز. آج ذرا ان دعاؤں کو ماڈرنائز کر کے تو لکھیے, اللہ بچے کو ڈاکٹر بنا دے, اللہ اس کی یونی کا کام اچھا ہو جائے, اس کا اچھا سا رشتہ کر دے, اللہ میرے بچے کو اچھی جاب دے دے. دیکھیے یہ مانگے میں نہیں کہتی, لیکن پوری دعا میں ابراہیم کا درد کیا ہے, نمازی. اور یہ دعا آپ میں سے شاید 80% لوگ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہوں گے. یہ وہ دعا ہے جس میں اولاد اور ماں باپ دونوں جمع ہو گئے ہیں. کیسے؟ ربنا وتقبل دعا, کہ میرے رب تو دعاؤں کو سننے والا ہے. ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب, اے ہمارے پروردگار مجھے میرے والدین اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہو. کہاں دعائیں جا کے پوری ہوئی. اب دیکھیے کہ ابراہیم کی دعائیں آئے 35 سے 41 تک پوری ہوئیں. بظاہر آپ دیکھیں کہ یہ پورا ایک رکوع ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو دنیا آخرت کی ہر بھلائی انہوں نے اس میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے مانگ لی. تھوڑا سا ایک اوور ویو کریں گے کہ ابراہیم کی ان دعاؤں میں سے کیا نقطے ہمیں عمل کے ملے. پوائنٹس میں لکھ لیجئے تو فائدہ ہوگا. پہلی بات جو پہلے تفسیر میں ہوئی کہ اپنے دل کی بات ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کی, اللہ سے براہ راست مانگا, کسی بڑے چھوٹے بزرگ کسی کو بیچ میں نہیں رکھا. پھر دوسری بات اس دعاؤں کے اندر جو ہمیں ملی, بڑی بڑی چیزوں کی دعائیں مانگی, بڑی بڑی چیزیں مانگی اپنی اولاد کے لیے. کہیں کہ اللہ میرے بچے کو امام کعبہ بنا دے, آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو یہ بتائیے کہ صحراؤں میں پھل کیسے اگ سکتے تھے. تو ابراہیم نے مانگی نا, تو عقل نہ استعمال کیا کرے دعائیں مانگتے ہوئے, دل استعمال کیا کرے. آج سے اپنی اولاد کو اتنے تپاک سے دعائیں دینی شروع کر دیں, کچھ وقت رکھ لیں اپنے رات اور دن کا. مانگتے تو آپ ہوں گے, میں نہیں ماں کہہ سکتی کہ آپ میں سے کوئی ماں غافل ہے, لیکن بعض دعائیں عادتاً ہوتی ہیں. اب شعوری 15 منٹ رکھ لیں 24 گھنٹے میں, جب آپ پورے دل سے اور پوری محبت دل میں ان بچوں کی لائیں, اللہ میرے بچے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے دل میں آپ کے بچوں کا کوئی گرج ہے تو یقیناً وہ آپ کو ستاتے ہیں نا, تو وہ ستانا بھی آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے. اللہ کہیں گے اس بچے کی دعا تمہاری قبول کروں جو تمہیں ستاتا ہے, میں نہیں کرتا. نہیں, پورا پیار. وہ وقت یاد کریں جب بچہ پیدا ہوا تھا, जो उस वक्त आपको खुशी हुई थी, पहली दफा जब आपने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया, जब पहली नजर जब देखी, वो सारे मीठे मीठे जज्बे दिल में रखे, कोई बच्चों के उस वक्त नाफरमानी ना सोचे, प्यार प्यार सोच के उनके लिए रोज दुआएं मांगे और अल्लाह से मन्नत मान लें कि अल्लाह मैंने इस रमजान के एंड होने तक अपनी दुआओं की कबूलियत का असर देखना, तो दिखा मेरे बच्चों को। अपने बच्चों के लिए दुआ मांगे। फिर इसके बाद एक और चीज़ जो हमें इसमें मिली वो क्या है कि अपनी नेकियों को वसीला बनाया अपनी औलाद के लिए दुआ मांगने में। तो वसीला बनाएं नेकियों का, कोई छुपी छुपी नेकियां करें ऐसी जिसके बाद फिर आपको दुआ मांग के मज़ा आ जाए कि अल्लाह इस अमल को मैंने सरासर तेरे लिए किया, कोई कमी नहीं, कोई बेशी नहीं, जो मैं कर सकती थी उस हिसाब से किया, इससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकती, तो तू मेरी इस बात को कबूल कर। लिहाजा ऐसी चीज़ों को बुनियाद बनाना चाहिए जिससे फ़ायदा हो। इसके बाद आप देखिए इखलास के साथ दुआ मांगी। फिर एक और बात क्या है, सबसे पहले सुकून की दुआ मांगी, अमन इत्मीनान, सुकून और इत्मीनान की दुआ सबसे पहले मांगे। आपको तो कई औलादों के अपने अंदर इरिटेशन है जिसकी वजह से वो हमारी बात नहीं मानते, तो अपने बच्चों के लिए अल्लाह की तरफ से सुकून मांगे, इतना प्यार दें इनको, इतना इनके अंदर को मुतमईन करें, और उसके लिए वही सारे सुकून के ज़रिए जो अल्लाह के नबी ने बताए, शादी की उम्र है तो शादी कर दें, भूख लगी है तो खाना दे दें, क्योंकि जब अंदर कुछ महरूमी होती है ना, तो उसके बाद फिर इंसान उसका इजहार बाहर ला के करता है। फिर इसमें एक और चीज़ हम सबके लिए अमल की और वो क्या है, आने वाले फितनों से पनाह मांगी। हम भी अपने बच्चों के लिए दुआएं मांग सकते हैं कि अल्लाह आने वाले दौर के फितनों से मेरे बच्चों को बचा। जिन लोगों ने साइंस ऑफ डेथ जजमेंट कोर्स किया तो उन्होंने सीखा होगा, कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेशन अच्छा रहा, कि जिसमें आने वाले वक्त के फितनों से पनाह मांगने की बात है। फिर इसी तरह एक और चीज़ है कि शिर्क सबसे पहली चीज़ है जिससे अपने बच्चों को बचाना है। पहली दुआ हज़रत इब्राहिम की क्या पढ़ी आपने, मुझे और मेरे बच्चों को बुतों की पूजा से बचा। शिर्क से बचा लेंगे बाकी चीज़ों से भी इंशाल्लाह बच जाएंगे। फिर इस तरह एक और अमल की बात, रब्बी रब्बी, बार बार रब को पुकारें दुआ में। आप किसी को मैसेज भी करते हैं ना, तो आप गए अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या हो रहा है, ठीक हो, हालांकि आपको पता होता है कि हमने किधर क्या मामला किसके साथ करना था, ठीक है ना, लेकिन अगर आप बीच में कहें अस्सलाम वालेकुम, फरा क्या हाल है, ठीक है, ओके व्हाट आर यू डूइंग, वर्ड्स में ओके हाउ आर यू डियर फरा, थोड़ी थोड़े दो तीन जुमलों के बाद अगर आप उनको बीच में एक दो जुमलों के बाद दोबारा उनका नाम ले लेंगे ना, तो उनको बात करना आसान हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि ऐसी दुआएं और ऐसी बातें अगले के दिल में उतरती हैं। फिर एक और चीज़ इधर से पता चलती है, और वो कि जानते बूझते और अनजाने में किए हुए शिर्क से भी पनाह मांगी ना, कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को हर तरह के शिर्क से बचा ले। फिर इसी तरह ये कहकर कि अल्लाह मैंने तेरी मोहब्बत में अपने बच्चे और बीवी को छोड़ा, तो ये चीज़ दोस्ती भी अल्लाह के लिए और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए इस अमल को हमारे सामने लाती है। फिर इसी तरह आप देखिए कि कुछ हमें अपने लिए गाइडलाइन मिलती हैं, वो क्या कि दुआओं की कबूलियत के लिए क्या करें। नंबर एक, अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। फिर दूसरी बात, अमली एक्शन लेने पड़ते हैं, मसलन इब्राहिम ने काबा तामीर किया, बच्चों की नमाजों की फ़िक्र की ताकि वो नमाज पढ़ें। फिर अगली बात जो बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ती है कि आज हम बच्चों के दुनियावी मामलात में तो तड़पते हैं और उनकी दीनी मामलों पे हम सो रहे हैं, इल्ला माशाल्लाह। फिर एक और बात कि अल्लाह पर तवक्कुल करें और दीन के कामों के लिए बच्चों को आगे लाएं, तो आप देखेंगे कि उसका असर आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर एक और चीज़ इससे पता चलती है कि जब भी अल्लाह ताला से कोई चीज़ मांगे ना, तो उसकी खैर भी मांगे, कहा करें अल्लाह ये आसानियों से मिल जाए, मुश्किल से ना मिले। फिर एक और चीज़, बच्चों के लिए नेमत मांगे तो साथ ही साथ उनको शुक्रगुजार बनाने की दुआ भी करें। फिर इसी तरह आप देखिए कि मायूस होकर दुआ मांगना ना छोड़ें। जिसको अल्लाह के वादों पर यकीन होगा ना, अल्लाह उसकी दुआ ज़रूर सुनेगा। और अब आखिर में जो उन्होंने माँ बाप के लिए दुआ की, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पहले अमल की बात तो यह है कि वालदैन के लिए भी दुआ करनी चाहिए। हज़रत इब्राहिम ने अपने माँ बाप के लिए दुआ क्यों की, जबकि हम जानते हैं कि वो शिर्क पे थे। अब इसके मुफसरीन ने चंद पॉइंट्स नोट किए। पहली बात है, कहते हैं कि उस वक़्त उनके माँ बाप हो सकता है ज़िंदा थे, और ज़िंदा इंसान की हिदायत की दुआ तो कभी भी की जा सकती है, या बाप कम अज़ कम ज़िंदा थे। फिर दूसरी वजह यह कि वादा जो बाप से कर लिया तो उसको पूरा करने के लिए, पीछे बात हो गई इस पर। और तीसरी बात है कि अभी उनको ये पता ही नहीं था कि मुशरिक माँ बाप के लिए दुआ उनके मरने के बाद नहीं की जा सकती। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन बात बड़ी दिलसोज है। यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारी दुआएं पूरी हुई। हम सब इन दुआओं को ही अगर याद कर लें, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोग फ़ैनी करीब की दुआएं पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसमें से पारे के साथ साथ चलती जाएंगी। इसकी एक छोटी सी टिप ले लेंगे, रमज़ान आ रहा है, हर पारे के साथ उस पारे की दुआएं दोहरा लें याद करने के लिए, तो इंशाल्लाह आपको लगेगा, फ़ायदा होगा। फिर आप एक छोटी सी बात नोट करें, सारी दुआओं में से औलाद के लिए जितनी भी दुआएं मांगी है ना, उसमें दुनिया की चीज़ें ज़्यादा हैं, रिज़्क, अमन, सुकून। लेकिन जब माँ बाप की दुआ मांगी तो एक फेरली और यौम यकूमुल हिसाब, क्योंकि माँ बाप अमूमन अपनी ज़िंदगी का हिस्सा गुजार चुके होते हैं। उनके लिए जो दुआएं हैं वो क्या है कि उनका अच्छा खात्मा हो, अच्छे तरीके से हो।
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب